कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
ये देखो 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 एक यहाँ सिंपल सा एक शॉर्ट में देखते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 16 में लिखा है कि हे परमात्मन, वेद ज्ञान दाता जो ब्रह्म बोल रहा है, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो आपका नाम है, तुम्हारी संज्ञा नहीं जो तुम्हारा नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। उसका ज्ञान इसमें कराया है कि वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा आता है, वो कबीर गर्भी कबीर वाणी द्वारा कविताओं के माध्यम से वो कबीर परमात्मा, वो कबीर अमर पुरुष कबीर देव, इसको हम कबीर देव लिख दें कवि, और वो कहां रहते ऊंची ऊंची आवाज में बोलकर कबीर वाणी द्वारा अपने महिमा की वाणी को आप ही उच्चारण करता है। 18वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र नंबर 18 96 के 18 में ये तृतीयम धाम महिष विराजमानुर राजती, यहां इसका अर्थ किया इन्होंने, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवान और पितरान इन दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, वहां रहता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 ने स्पष्ट किया। अब हम फिर आते हैं वापस 86 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में ये आपने सुन लिया कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता कहां से, इसमें स्पष्ट किया है कि वह जो परमात्मा धूलोक के तृतीय दिव्य से दिव्य दिव्य होता है तेजो में, उस दिव्य धाम में के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। इसे से दो क्या कि वो परमात्मा एक स्थान पर रहता है और वहां से चलकर आता है गति करके। आगे देखो वो किस लिए आता है, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 सूक्त 82 यानी, और इसका मंत्र 1 2 3 क्लियर करेगा। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्वोत्पादक प्रभु, जो सबका को उत्पन्न करने वाला, सब ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, प्रकाश रूप प्रकाश स्वरूप यानी तेजो में सद्गुणों की वृष्टा करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजेव राजेव माने राजा के समान, ये देखो राजा के समान राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है। वेद डंडोरा पीट रहे हैं, परमात्मा मनुष्य जैसा है, राजा की तरह दर्शनीय है, देखने योग्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकंतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों, जो श्रेष्ठ दृढ़ भक्त है, वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है आकर के वो परमात्मा। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे इसका अर्थ है कि बिजली की तरह आकर, इसका क्या अर्थ है कि जैसे बिजली गुड कंडक्टर में ही प्रवेश होती है, अच्छे भक्त इसलिए कहा है कि वो परमात्मा उन्हीं में अपना ज्ञान प्रवेश कर सकता है जो गुड कंडक्टर है। इब लकड़ी के अंदर से बिजली नहीं आ सकती, पत्थर में भी नहीं आ सकती, ये तो लोहे तांबा पीतल चांदी सोना इनके तारों से ही वो लाइट वो इलेक्ट्रिसिटी आगे आ सकती है। यहां स्पष्ट किया है कि वो जो अच्छे कंडक्टर हैं उनके श्रेष्ठ भक्त हैं उनमें वो परमात्मा आता है, जैसे बिजली अपने जिनमें वो प्रवेश कर सकती है उन्हीं में होती है, इति सिद्ध। और वो क्या करने आता है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2 में स्पष्ट किया है, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ की के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। बहुत ही तेजी के साथ बहुत थोड़े समय में परमात्मा अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के मैले पहले की वाणी में कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे बे, फाई सूरत मलुक की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, करासियाना भोता भार, ये धानक रूप रहा करता। अब ये महापुरुष थे जो गुड कंडक्टर थे, परमात्मा दिन में अपने ज्ञान को प्रवेश कर सकता था। कौन कौन थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, इस कलयुग के गिनाऊ हूं, कलयुग में आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी जो खेखड़ा में मेरठ जिला के में उत्तर प्रदेश में उनका स्थान है, इनको परमात्मा मिले। ये तो दास को इन लगभग आधा दर्जन महापुरुषों के बारे में जानकारी है, और समझदार को लिए थोड़ा संकेत बहुत होता है। और वही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से चलकर आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, प्यारी आत्माओं को, जिनमें वो अपना ज्ञान प्रवेश कर सकता है और उसको वो आगे लाभ दे सकते हैं। आगे देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 3, एक दो आपने पढ़ लिया, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक। अब सर्वव्यापक कितने का जब गति करके चल रहा है वो सर्वव्यापक, तो फिर अलटल नहीं की जरूरत है उसने, यो सर्वव्यापक नहीं है, आप माने आप, बस संस्कृत शब्द देखिएगा, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं, यानी वहां से चलकर आप आते हो। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा साकार है, शरीर है, मनुष्य जैसा है, राजा की तरह वो सबका कंट्रोलर और देखने योग्य है, साकार है, वो वहां सतलोक से चलकर आता है, कहीं एक विशेष स्थान पर प्रभु रहता है। तो महर्षि दानंद जी के उसका के सारे एक कुएं का पानी बांध पी रहे थे, किसी ने देख ले, सभी ने कहे विष्णु जी का उपासक है, और कहता भगवान की सा वो तो निराकार है, वो तो कहने सुन तो न्यारा है, और ये सीधा जो तो निरायकति डोल पीटता, कोई आधार नहीं था इसका, तो सारे सिद्धांत वेद ही इनके फेल कर रहा, जो नकली ऋषि थे, नकली गुरु थे, ये डुप्लीकेट माल था। अब इसलिए दास का प्रयत्न है कि ये आपको ये लाल परखने योग्य बनाऊं, ताकि आप ही लाल और लालड़ी की परख करके और स्वयं ही आप पर पटक दो ठाके उनको जिनको तुम लाल समझते थे। एक सेठ था, दो भाई थे वो सेठ, छोटे की मृत्यु होगी, छोटे का दो लड़के थे। कुछ दिन के बाद उनकी माता ने कहा कि तुम्हारा पिता रहा नहीं बेटा, तुम अपने ताऊ जी से, ताऊ जी कहते हैं अपने हरियाणा में पिताजी के बड़े भाई को, एल्डर ब्रदर को, अपने ताऊ जी से पार्टनरशिप कर लो बेटा, तुम अकेले बिजनेस नहीं कर सकते और मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे तेरे पिताजी के समय के रखे हुए लाल हैं, वह गिठड़ी पोटली बांध रही थी माई, 5-10-20 लाल ले रही थी, वो अपनी सोच में लाल लिए हुई थी, वो लाला की गिठड़ी दे दी के लिए बेटा तेरे पिता ताऊ जी को दे दो, कहना कि पैसे नहीं है लाल रख लो और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे ये लाल हम छुड़वा लेंगे। अब वो दोनों बच्चे माता जी के आदेश अनुसार वहां पहुंच गए, अपने ताऊ जी से कहा कि ताऊ जी मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है, तो उसका ताऊ जी बोला ठीक है बेटा, आप मेरे ही तो बच्चे हो, भाई के बच्चे को दूसरे थोड़े होते हैं, आप कर लो बिजनेस और इन लालों की भी आवश्यकता नहीं है। उसने खोल कर देख लिए सेठ ने और उल्टी गिठड़ी बांध के वापस वह गांठ बांध के वापस दे दी। तेरी माँ ने कह दो बेटा चौकस रख लेगी तो संभाल के, अभी मेरी उधार बहुत चलती है, उधार सामान ले आवांगे और वापस आवांगे ना, जब फिर उनको लेकर आप फिर ले आएंगे, यहां ले चलेंगे और जिसको देने हैं उसको दे देंगे। अब क्या किया कि उस सेठ जी उन दोनों बच्चों को अपने भतीजों को ले गया, वहां लालों का आदान प्रदान कराया, लाल और लालड़ी की परख करा दी। अब उन बच्चों को बड़ा ध्यान से देखा, ये लंबी कहानी है बाकी शॉर्ट में सुनाना चाहता है दास। उन बच्चों ने लाल और लालड़ी दोनों देख ली और अच्छे तरीके से देख लिए। एक सेठ ने उन पर डांट भी मार दी कि तुम ये लालड़ी, ये नहीं लालड़ी, झूठ बोलते हो, लाल ऐसा होता है। तो उन बच्चों के वो लाल और लालड़ी की बहुत अच्छी तरह परख होगी। वापस आए, वापस आ गए अपने घर पे, बहुत सा सामान ले आए, तो उस ताऊ जी ने कहा कि बेटा जाओ तेरी मां से वो लाल ले आओ और उधार सुधार गणी होगी तो किसी के गिरुआ रख लेंगे, चलेंगे जब ले चलेंगे उसको। वो दोनों बच्चे भागे भागे गए अपनी मां के पास और कहा मां, मां मां बोली बेटा आगे तुम आओ भोजन पालो रोटी खाओ। नो बोले रोटी पाछे खावांगे हम, पहले वो लाल दे ताऊ जी पे बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और वो लाल दे कहां रखे हैं, ताऊ जी को देख आते हैं। तो उन बच्चों ने सोचा, मां लाई ठा के ले बेटा नो के नो रखे हैं, बच्चों ने सोचा भाई देखते ला खोल के लाल है लालड़ी के, परख करने योग्य हो चुके थे वो बच्चे। अब वो स्वयं पारखू हो गए थे, जो ही उन दोनों भाइयों ने गिठड़ी खोल के देखी तो वो तो लालड़ी थी, लाल नहीं थे। अपनी मां से कहने लगे मां आप तो बिल्कुल बोली हो, आपको पता नहीं, मां ये लाल नहीं, ये तो लालड़ी है, ये तो 200 रुपये की भी कोई ना, लाल तो 9 लाख का होता है, आजकल 9 करोड़ का कह लो, पहले 9 लाख बहुत गणे होते थे, 1 लाख ही बहुत होता था। उनको वही पटक कर दोनों बच्चे ताऊ जी के पास गए और कहने लगे ताऊ जी मेरी मां ना बोली वाली है सीधी सादी, उसको पता को नहीं पिताजी, ताऊ जी वो लाल को नहीं थे, मेरी मां जो रखे हुए थे तो लालड़ी थी। वो ताऊ जी बोला बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे, और यदि मैं कह दो ना नू ये लालड़ी है, तेरी मां 100-100 लाने दे हो, मेरे सिर पर धनी ना रहा, मारे तो लाला ने भी लालड़ी बतावा है, देख ले किसे किसा गुंडा आदमी है। बेटा मैंने इसीलिए तुम्हें इस योग बना दिया कि तुम आप परख करके आप पटक दो ठाक है, ये लाल है लालड़ी। तो ये दास ये ज्ञान कराना चाहता है कि आज तक के नकली लोगों ने, इन नकली ऋषियों महर्षियों ने आपको क्या ज्ञान दिया है, इनके अनुभव की पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं, आप शिक्षित हैं, वेद अपने पास है जिनको हम सच्चे मानते थे, आज भी वही सिलेबस है और ये नकली टीचर पढ़ाया करते तब भी यही सिलेबस था, ये आउट ऑफ सिलेबस दंत कथा सुनाते थे, ये दास शास्त्र से बाहर एक शब्द भी नहीं बोलता, सिलेबस से बाहर एक अक्षर भी नहीं आपको बता रहा, और ये आप भी खूब देख सकते। अब ये तो वेदों ने प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा ऐसे आते हैं, अब आपको एक प्रैक्टिकल सुनाता हूं। सन 1518 में परमात्मा कबीर जी सतलोक चले गए थे मघर स्थान से, सह शरीर गए थे, लाखों कई हजारों की संख्या में वहां व्यक्ति देख रहे थे परमात्मा को जाते हुए। उसके बाद सन 1727 में गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में संत गरीबदास जी महाराज जब 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गायों को चरा रहे थे, साथ में और भी कई गवाले थे। गरीबदास जी महाराज जी के वहां उनके पिताजी को के पास, यानी वो अपने नाना के रहते थे और उनके पिताजी अपन वहां घर जमाई थी, और गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था। कहने का भाव ये है कि वहां लगभग 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास साहिब जी के नाना जी के यहां, और वो सारी के वारिस गरीबदास जी ही हो गए थे, उनके वो भी अकलौते पुत्र थे अपने माता पिता के। तो अपनी गवों को वहां चरा रहे थे, साथ में और किराए के पाली गवाले कुछ वैसे अपनी अपनी गायें लेकर के, अधिक क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर वो बगैर बीजे रहता था, घास फूस उसमें हो जाता था, तो पशुपालन अधिक करते थे। तो परमेश्वर कबीर देव, वो धानक कबीर, वो जुलाहा कबीर, सर्वश्रेष्ठ रचनहार कबीर सतलोक से चलकर सन 1727 और संवत 1784 में, संवत 1784 में, सन 1727 में वहां आके सह शरीर आए, वहां बच्चे बैठे खाना खा रहे थे सब, ग्वाले और गरीबदास जी, बड़े भी थे उसमें, 20 30 40 वर्ष के भी थे, 60 50 वर्ष के भी थे, और सबसे छोटा बालक गरीबदास जी ही थे जो 10 वर्ष की आयु के पाली थे, ग्वाले थे, गांव के गवों के यानी चरवाहा थे। तो परमेश्वर ने आकर उनको राम राम कहा, स्वाभाविक है सब कहने लगे आओ महाराज जी खाना खा लो। परमात्मा ने एक जिंदा महात्मा का रूप बना रखा था, मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, बड़ी दाढ़ी, सिर पर एक टोप काला सा, ऐसे लंबे चोटे का नो ऊपर ने उठा हुआ ऐसे, और एक और कोट पहनते थे घुटने तो तले ताई का एक कच्छा, बस ये वेशभूषा होती उसको मुसलमान फकीरों को जिंदा महात्मा, जिंदा संत, जिंदा साधु बोलते थे। तो संत वो सब पाली कहने लगे आओ महाराज जी रोटी खाओ खाना खाओ। परमेश्वर ने कहा भी खाना तो मैं भी खा कर आया हूं, भूख नहीं है। कहां से आए हो, आपके गांव का क्या नाम है, वो कितनी दूर है? परमेश्वर ने कहा कि 16 संख कोस पर मेरा गांव है, सतलोक नाम है मेरे गांव का। अब पहले इतना कन्विंस था को नहीं, आपस में जानकारी थी नहीं, उन्हें सोचा होगा ले 15-16 कोस पर कोई गांव सतलोक नाम होगा। तो पाली कहने लगे पहले अतिथि सत्कार बहुत होता था, और फिर साधु महात्मा आ जाते उसकी कदर भी ज्यादा ही करते थे। उन्होंने कहा महाराज जी रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, हमने पाप लगेगा। परमात्मा बोले भाई दूध पियाओ तो पिला दो, मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। वो पाली बोले, ग्वाले कहने लगे महाराज जी तेरी दूध पीने की नीत को ना, तो मजाक करे हमारे साथ। इतनी वार्ता हो रही थी, गरीबदास जी उठे, 10 वर्षीय बालक, एक अपनी छोटी सी गाय बच्ची जो दूध पीना छोड़ चुकी थी, 1 वर्ष की 1.5 वर्ष की थी, नए दूध नहीं हुई थी, वह दनाई नहीं थी, अधन्या थी, बिना दनाई यानी कति कुंवारी, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करता है तो उसमें भी वो एक छोट बिना दनाई गायों गांव के द्वारा उसकी परवरिश होती है। और परमात्मा जब भी यहां आते हैं, अब कुंवारी गाय का दूध पीने का तात्पर्य क्या था कि परमात्मा ने सतलोक से अपना आहार यहां मंगाया था, इस कंगाल लोक का नहीं आहार किया था, और वो सीधा पवित्र पशु गाय में आ गया, और वहां उसने तो गरीबदास जी छोटे से बच्चिया को ले आए, कुंवारी गाय को, और लाकर वहां खड़ी कर दी। कहने लगे महाराज इसका बच्चा तो है नहीं। गरीबदास जी बोले दूध कैसे दे गया? परमात्मा बोले भाई ये जो तुम्हारा पात्र है ना, एक जो पानी पीन का एक नारा रखा करते मिट्टी का पात्र है, कई ये लस्सी ले जाते थे, उस तो भी एक छोटा सा होता था जिसमें 10-8 किलो 5-7 किलो दोनों जल आ जाता था। कहने लगे इसने साफ कर लो। जो बोले जी वो पानी वाला साफ है, उठाकर कहने इसके नीचे रखो गाय के लेवटी के नीचे। उसने थनों के नीचे गरीबदास जी ने पकड़ दिया। कबीर परमेश्वर ने उस बच्ची के गाय की बछिया के कमर पर हाथ मार दिया, आशीर्वाद टाइप थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध अपने आप दार बन गई और वो पात्र भरते ही अपने आप दूध बंद हो गया। अब गरीबदास जी लेकर उस पात्र को उस छोटे से मटके ने बरोले ने मारा, बरोला का करें इसमें रोहतक जिले में बरोला छोटा सा पात्र होता तो 5-7 किलो का होता, तो उस पात्र को लेकर के मटके को गड़े को लेकर के गरीब कबीर साहब के पास आए। ले बाबा जी दूध पी ले। परमात्मा ने आधा दूध पिया। आधा दूध पीकर कहा ले बालको तुम भी पी लो ग्वालो, ये अमर प्रसाद है। वह दूसरे पाड़ी जो कहने लगे हम ना पीवा यो पाप का दूध, बिना ब्याई गांव का काट दिया करा के जादू तंत्र कराया तो हम ना पीवा, उठकर चले गए। गरीबदास जी बालक थे, उन्होंने पी दिया। अब आपने सुना है ना काग वाला का असर ना हो कोई लाले बच्चा का असर होया करे, तो गरीबदास जी से परमात्मा ने ज्ञान चर्चा की, काफी चर्चा हुई। फिर गरीबदास जी ने कहा प्रभु आपका वो लोग दिखा दो जहां से हम आए थे, वशिष्ठ रचना सुनाई, एक बार देख लू ना फिर मैं नहीं मान्या करता किसी की। परमात्मा ताए उसी उद्देश्य से थे। गरीबदास जी की उस आत्मा प्यारी आत्मा को शरीर से निकाल लिया, ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाया, इंद्र का लोक दिखाया। जहां ये काल रहता है साकार रूप में, ये कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट कहता है कि मैं सबके सामने कभी नहीं आता, अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं। तो परमेश्वर के सामने इसकी सारी माया फेल हो जाती है। सब कुछ दिखाया, ऊपर सतलोक में लेकर गए जहां परमेश्वर कबीर जी रहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म रहते हैं तीसरे मुक्ति धाम में सतलोक में। तो वहां क्या है कि परमात्मा का एक अन्य रूप है। गीता ऋग्वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार परमात्मा को साकार सिद्ध किया है। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, सह शरीर है और उस परमेश्वर का सबकी पालन पोषण करने के लिए, सबका धारण पोषण करने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 2-3 परमात्मा प्रगट स्पष्ट हैं, शर पुरुष अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष तु अन्य। और परमात्मा इति उदारते ये लोक तरण में आविश्य विभर्ति अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी वहां से चलकर आकर सबका धारण पोषण करता है। हमारा आत्मा का धारण पोषण इस भक्ति से होता है, शरीर का पोषण आहार से होता है, जो रोटी दूध सेव संतरे खाते हैं, और आत्मा का पोषण इस भक्ति से होता है। तो हम सबका धारण पोषण करने के लिए वो परमात्मा यहाँ आता अतिथि रूप में। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि यानी डेट पूर्व निर्धारित ना हो, अतिथि अचानक आ जा। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 1 में 2 बार यही वर्णन दिया है। अग्ने तनुरसी परमात्मा सह शरीर है, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णवे माने सबके पालन पोषण के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर असी माने है। वो अतिथि रूप में आता है और वो अतिथि रूप में आया हुआ परमात्मा कबीर ही पूजा के योग्य है, उसी पूजा करनी चाहिए, ऐसा उसमें लिखा। तो परमात्मा का 2 शरीर है, ऊपर शरीर अलग है, वहां से अन्य अलका रूप तेज पुंज का रूप धारण करके यहां आता है। गरीबदास जी के को साथ लेकर जब अपने निज लोक में पहुंचे, वहां एक बहुत बड़ा सफेद गुम्बज है, बहुत लंबा चौड़ा, और उसके बीच में परमेश्वर कबीर जी का, सत्य पुरुष का सिंहासन है। सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, उनके एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी फीकी रहे, इतना नूर है उस मालिक के शरीर का। नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा गए थे, उन्होंने जाकर के वहां एक चंवर उठाया और चंवर उठाकर उस अपने ही दूसरे स्वरूप जो ओरिजिनल दिखाई दे था, जो सिंहासन पर विराजमान तेजो में शरीर, उस पर चंवर करन लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तय यो बैठा ये है भाई, अरे यो जो बाबा है ना, यो तो इसका कोई नौकर नाकर है, यहां का इसका कोई संदेश वाहक नजर आता है। इतनी सोच ही रहा था तभी वो जिंदा वाला शरीर तो सिंहासन पर बैठ गया और वो तेजो में शरीर जो वो ओरिजिनल गौड़ दिखाई दे था वो खड़ा हो गया, और चंवर लेकर के वो कबीर साहब के जिंदा वाले शरीर पर सिंहासन पर चंवर करने लगा, यानी नौकर की तरह, यानी सेवक की तरह सत्कार करने लगा। अब गरीबदास जी ने सोचा बाबा जी के तांडी है, भगवान भी इस पर चंवर करे। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गया, अकेले परमेश्वर वहीं बैठे रह गए थे कभी जिंदा महात्मा के रूप में, जो नीचे से गरीबदास जी को लेकर गए थे। तो वहां फिर गरीबदास जी ने सोचा रहे बाबा जी के यू तो भगवान ना पड़ा था, फिर चरणों में पड़ गया, वहां की सारी स्थिति से परिचित होकर गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे वापस ना भेजिए, यही राख लो। अब परमात्मा बोले राख ते लो, पर मेरा तो काम सारा अधूरा रह गया, अब तू वापस जाकर बताओगा नहीं तो मेरी महिमा जानने कैसे देगा, यू काल इसने आग ला रखी बेटा, जा तू वापस, मैं तेरे साथ रहूंगा, गरीबदास चिंता मत करिए, और जा देख तेरा यहां स्थान है, इस पर यहां से तू मुझे मैंने भेज रखा है, अरे अपना उद्देश्य पूरा करना है, बिजली पीढ़ी आओगी उसके लिए ही हमने कुछ यहां लक्षण छोड़ने पड़ेंगे ताकि मेरे बच्चे हमें पहचान सके। उधर से क्या हुआ, गरीबदास जी काफी देर बैठे रहे, जैसे नू कहनु बैठे थे, शरीर मृत था, ग्वाले दूसरी जगह चले गए, वो पाली दूर लंबा खेत था, फिर देखा रहा वो लड़का की गया, लड़की का लड़का, उसको लाओ बुला के, उसका नंबर आ गया डांगर घेरन का, पशुओं को चराने का पारी बन जा करते वहां पर, एक घंटा तेरी, एक घंटा इसकी, एक घंटा इसकी, तुम ऐसे, जब उसका नंबर आ गया बुलाओ उसको बुला के गए, तो वहां बैठे अकेले हुए, आवाज लगाया उन पालियों ने, रे गरीबू, गरीबू नाम था बचपन का गरीबदास को, गरीबू गामा में एक नारा नाम का डाग रहे, बोला रहा गरीबू आजा तेरी पारी आ गई, ओ गरीबू, करते करते निकट आके ने बोला रहा वो भगत जी खड़ा बोले, वो न्यू लाया तो वो पड़ गया न्यू, क्योंकि उसमें आत्मा थी नहीं, निर्जीव था, उसने देखा देखा अरे तो मर गया भाई, छोरी का छोरा लड़का मर गया, आवाज लगाई रहा बाजाओ बाजाओ, ओ बाबा मार गया इसने, मर गया, मृत्यु होगी इसकी, सारे पाली दौड़ का आए, देखा सचमुच भाई तो मर गया, इसने दूध पी लिया जंतर मंत्र का। अब उनकी इतनी बुद्धि काम करे थी, उनको क्या पता, बोले आदमी ने गांव में बाजे गए, दो तीन जने भाग कर, 1.5 किलोमीटर गांव था, अब छोटा सा गांव था, 40-50 झोपड़ी थी, सारे गांव में तल करलाट मच गया, हाहाकार मच गई, इतने बड़े धनी का इकलौता पुत्र और वो भी मर गया, सारा गांव रोए, वहां का औपचारिकता करते हुए रोए, कुछ वो सच्चे जलते रोए, बिघन मच गए। फिर उस बच्चे को वहां से उसके शव को घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए, शाम के समय उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया, तब परमात्मा ने कहा गरीबदास जा जल्दी कर, नहीं तो तेरे शरीर न करने वाले है काम ये। अब वो वापस आए, आत्मा परमेश्वर ने कबीर जी ने प्रवेश कर दी उस गरीबदास जी के शव में, शरीर में, तो वहीं एकदम उठ खड़े हुए, जो रस्से बांध रखे थे उस अर्थी का ऊपर का हुआ भी टूट गया ऊपर, और फिर ये बाणी बोलने लग गए, जो आंखों देखी जो परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी गरीबदास जी में, अपनी महिमा की वाणी गरीब कबीर साहब ने गरीबदास जी के अंदर फीड कर दी थी। फिर गरीबदास जी ने एज ए टेप रिकॉर्डर बनो क्यों बोली। फिर एक दादू पंथी महात्मा 3 वर्ष तक वो बच्चा ऐसे ही बोलता रहा। गांव वाले कहने लगे तो बावड़ा हो गया और बावड़िया कहने लग गए उसने पागल मेंटल। गरीबदास को भी बावड़ा बताया के कर ले इस दुनिया सैनी का। इन कह कहेगा बेरा नहीं और संतान पागल बतावे। अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम का एक भक्त आया, वो संतों की वाणी से परिचित था, संत बना हुआ था, घर छोड़ के बाल बच्चेदार था, चौथे आश्रम में 60 साल से ऊपर उम्र थी उसकी। तो उसने उस गोपाल दास आकर के छुडानी गांव में एक भगत के यहां रुकता था, उसका श्रद्धालु था। तो उसने उस गोपाल दास के सामने प्रार्थना की कि महाराज जी मारे एक किसान जमींदार का लड़का हमारी छोरी का छोरा घराए में है और उसको एक संत ने कुंवारी गाय का दूध प्या दिया निकाल के और संत की विद्या ने संत ही डाइल्यूट कर सकता है डिलीट कर सकता है तो आप दया करो। गोपाल दास भी दूध का डंडे जाड़े जुड़े जाने था, उसने क्या बुला के तो गरीबदास जी को ले आए। 10-13 वर्ष के बालक थे, 3 वर्ष बाद की बात है और उनके नाना जी पिताजी और भी कई बुजुर्ग आ गए। तो गोपाल दास जी ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था, कौन था जिसने तेरा नाश श्री ऐसे बालक को बर्बाद कर दिया। गरीबदास जी बोले महाराज जी बर्बाद नहीं मुझे तो आबाद कर दिया। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रे थीरी, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है और सुन मंडल रे थीर, वहां सतलोक में रहता है वो सथाई रूप में, थीर माने सथाई, और गरीब दास का उद्धार कर दिया मैंने सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाए अवकाशी मैं कबीर हुआ। अब गोपाल दास कहने लगा रहे बोले लोगो तुम इसने बावड़ा कहते हो, बावड़े तुम हो, ये तो महापुरुष ये तो महान संत है भाई, इनको तो कोई भगवान मिला कहे। तब गरीब दास जी से कहा महाराज जी ये वाणी लिखवा दो। तो गरीब दास जी ने कहा बस सारी लिखा तो लिखवाऊ, कदे बीच में छोड़कर बाजा लाला जी। वो बाणिए के घर से शरीर था उस गोपाल दास का, तो थोड़ी बहुत उर्दू अर्दू जाने था, तो उन्होंने फिर इसको लिपिबद्ध किया, हिंदी भी थोड़ी सी जाना था। 6 महीने तक गरीबदास जी बोलते रहे, वो लिखते रहे, तब ये लिपिबद्ध किया। एक समय गरीबदास जी जो 30-40 वर्ष के हो चुके थे, उनके शिष्य काफी हो गए थे, इधर उधर जाते थे, जनता को समझाते थे। एक संत एक भक्त उनका भक्त लुधियाना के पास एक वासियर गांव है पिंड, उसकी उसके बाहर जंगल में सरोवर के पास एक तालाब के पास वहां स्नान करके और सुबह के नित्यनेम करे था, ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था हाथ से लिखी हुई। और उसी गांव का एक बहुत बड़ा किसान चौधरी राय साहब राम राय नाम था उसका, वो भी सुबह फ्रेश होने के लिए निकला। तो ये सिख लोग जो है वाणी के बड़े प्रेमी हैं और उसने देखा इतनी बढ़िया वाणी बोली जा रही है, सुबह सुबह शांत वातावरण, वो फ्रेश फ्रूस होकर आ रहा था, उसने साफ हाथ पैर धोकर वो भी उसके पास बैठ गया। महाराज जी भाई भगत बहुत बढ़िया वाणी पढ़ रहे हैं। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया तब उस राम राय ने पूछा कि भाई महाराज जी ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब की तो नहीं है, ये किस महात्मा की है, बहुत प्यारी, आत्मा को खेचे है या तो खिंचाव करती है। तो उस भगत ने कहा कि ये हमारे गुरुजी गरीबदास जी की वाणी है। तो उस राम राय के मन में उमंग हुई कि इसे महापुरुष को तो मिलना चाहिए जो वर्तमान में है, और इतनी इतनी प्यारी वाणी अच्छी कसक वाली वाणी वो अब बोल रहा है, जनता उसको लिख कर याद कर रही है। गुरु नानक देव जी भी थे, उसने लोगों ने पहचाना नहीं, कहीं आज भी हमारे साथ ऐसा ही बन जाए, ना पता किस रूप में आ जाते हैं सतगुरु। तो उस राम राय ने अब गांव में एक और न्यारा नाम भी रख लेते हैं, झुमकरा। उसका एक नाम और रख रखा था झुमकरा, वो ज्यादा संकी टाइप आदमी था। तो उसने पूरा एड्रेस लिखवा लिया गांव छुड़ानी का, और वो तो अगले दिन चल पड़ा। वह पहुंचा जाकर, सुबह सुबह पहुंच गए। गरीबदास जी खेतों में गए हुए थे, किसान थे, किसान का काम करते थे, हल जोतते थे, पशु चराते थे, और सिर पर पशुओं का चारा आप ही काट कर लाते थे, बंडल बांध गए। तो 11 बजे तक वो वापस आ जाते थे, फिर उस बैठकर भगत बैठते थे, उनको चर्चा कराते थे, सुनाते थे। तो गरीबदास जी खेतों में गए हुए थे, उनके आने की इंतजार में गरीबदास जी के ही दरवाजे में, बहुत बहुत बड़ी वहां पौड़ी थी, एक बड़ा सा हाल था, उसमें भगत इंतजार कर रहे थे 5-7। तो वहां किसी से पूछा कि भाई गरीबदास महाराज का घर कौन सा है, तो किसी ने बता दिया कि वो सामने चला जा भाई, महाराज मुरुद तो ना है पर वो गरीबदास का घर ये है। गांव वाले नहीं मानने थे उनको विशेष रूप से, क्योंकि वो अपना सिंपल जो वेशभूषा हरियाणा की होती है ना, धोती और कुर्ता, ऐसे रहते थे। और राम राय जब पहुंचे उसमें उनके घर पे, तो भगत बैठे थे, उन्हें कहा आओ भाई सरदार जी, आ जाओ बैठो, कैसे आना हुआ? कहने लगा भाई मैं महाराज गरीबदास जी से मिलने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि वो अभी आ जाते हैं, घूमने गए हैं बाहर खेतों में, आ जाते हैं, बैठ जाओ, खाना खा लो। उन्होंने बोला भाई खाना पीछे खाऊंगा, पहले मैं महाराज जी के दर्शन करूंगा, मैं तो आए इस उद्देश्य से हूं। उन्होंने बता दिया इस साइड में खेतों में गए हैं, इस रस्ते रस्ते चले जाना। वो चल पड़ा अकेला ही। उधर से गरीबदास जी आ रहे थे, धोती कुर्ता, जो यहां की आम किसान की ड्रेस होती है, और सिर पे पशुओं के लिए थोड़ा सा चारा रखे आ रहे थे, ज्वार काट के ज्वार। अब उस राम राय जी ने पूछा उस को एक जन साधारण जानकर के, भाई चौधरी साहब मैंने महाराज गरीबदास जी से मिलना है, और बताया वो इधर घूमने आए हैं, आपने देखा कहीं आसपास हो? अब गरीबदास जी ने तो पता था अंतर्यामी थे वो, तो उनको ये मालूम था कि यदि मैंने न्यू कह दिया कि मैं हूं गरीबदास महाराज, तो सरदार जी यहीं से वापस चला जाओगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उसने संत की वेशभूषा ड्रेस कैसी सोच रखी थी, वह बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, सिर पर केस होंगे, हाथ में चिमटा ले रखा होगा, राख रम मसल रखी होगी शरीर का ऊपर, एक लंगोट लंगोट में होगा, लाल आंख कर रखी होंगी, मुंह या कति लाल कपड़े पहन रहा होगा। उसने इस दृष्टिकोण से अपना इमेजन बना रखा था कि महाराज ही साहब आओगा, और परमात्मा अंतर्यामी थे। वो कहने लगे आजा भाई, महाराज जी तो वापस जान लाग रहे हैं, वापस जा रहे हैं। वो बोला जी इस रस्ते तो ना गए, मैं इधर से आया, बोला आजा मेरी बात भी सुनेगा, आजा मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा तेरे को। अब उसने सोचा भी ठीक है, ये जानकार है यहाँ के, उस पीछे पीछे आ गए। और गरीबदास जी अपने घर पे आके वो चारा ला रहे थे, वो सेवादार बैठे थे वहां पर, उन्होंने दौड़ के उनमें से एक दो ने वो चारा जो सिर पर रखा था वो स्वयं ले लिया, और दंडवत प्रणाम किया शेष ने, बाकी 4-5 ने। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यूं के हुआ इस किसान ने, ये आदमी क्यों प्रणाम कर रहे हैं? एक से पूछा रहे यू कौन है भाई, ये कौन है? तो वो कहने लगे ये महाराज गरीबदास है। अब उस राम राय ने सोचा ले तेरा गजब, ये यू महाराज पाया, 200 किलोमीटर चलकर यू महाराज पाया, ईसा महाराज होगा इस तरह ईसा तो मैं हूं, मेरा भी 250 एकड़ जमीन है, इसका थोड़ी ज्यादा होगी। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे कि कदे सरदार जी खिसक ना जा, अपने भक्तों को बोला भाई मैं नहाऊंगा, पानी डाल दो। एक भक्त ने पानी डाल दिया, बैठ गया पाटड़े पे, सरदार जी ने दूर बैठ गया थोड़ी दूरी पे, और उन भक्तों को कह दिया जा तू बैलों को पानी पियाला, फिर बैठेंगे चर्चा करांगे, आप जाओ फलाना काम कराओ, आप उनको बुला लाओ, फिर बैठेंगे या चर्चा करांगे। वो पांच चार थे सारे इधर उधर भेज दिए। अब गरीबदास जी ने जब स्नान कर लिया, एक धोती बांधते हैं हरियाणा में वो, अब उसी को तो बांधते, उस समय तो एक बेल्ट बनाया करे नू बेल्ट, उससे का एक सिरा मोड़ तोड़ का बेल्ट बनाया करे धोती ऊपर का बांधते। तो गरीबदास जी ने कहा कि भाई झुमक रहा इधर आइए। अब राम राय नाम बताया था उसने कि मेरा राम राय नाम है। झुमक रहा वो गांव में तो कहा करते थे पर कोई परिचित नहीं था, और दूसरा उसके विचार ऐसे थे, डगमग हो रहा था उस समय कि चलूं उठूं और क्यों बैठ गया, कह चल चलता हूं, फिर सोचा दो बात कर लियो महाराज कह इसने, तो ऐसे उसका मन डामाडोल था, झूम रहा था। तो गरीबदास जी ने उस दृष्टिकोण से भी कहा झुमक राय एक बार आइए भाई, मेरे हाथ का चोट लग गई उंगली के, और यह बेल्ट ना बंधती, वो धोती का एक सिरा इतना लंबा कर लिया अगर उसके चारों तरफ बांधा था, ले गांठ लाइए भाई इसके। अब राम राय ने, अब जैसे वो धोती को ऐसे बना लेते हैं ऐसे ऐसे कर चारों तरफ बांधते हैं उसको ऊपर का, वो लाए ऐसे करके नू शरीर के चारों तरफ लाकर उसका गांठ ला कर नू, तो वह गांठ लाई जब वो शरीर में के निकलाई और वह गांठ धोती का लाग गई। अब धर्म उस धुमकरा ने राम राय ने सोचा तेरे को उल्टी गांठ लागी की, तो उन्हें फिर दोबारा करा, दोबारा फिर ऐसे गांठ लाई तो शरीर का मां के निकल के वह धोती का लागी। उन्हें तीसरी बार फिर ट्राई करी, तीसरी बार भी नहीं लागी। अब गरीबदास जी बोले रहे सरदार जी तू मुझे अपने जैसा आदमी मानना है या गांठ क्यों ना लगती, जब उसने ऊपर ने देखा तो वो विष्णु उपासक थे, विष्णु जी को इष्ट मानता था, ऊपर ने देखा तो विष्णु रूप बन रहा गरीबदास जी का, हाथ में चारों हाथ शंख चक्र गदा पदम और विष्णु और चक्र घूमा ऊपर गए, अभी देख कर तो सरदार जी चरणाम गिर गया राम राय, हे भगवान आप तो सचमुच विष्णु अवतार आए हो। आप परमात्मा कहें जागी रही भावना जैसी, उसने उसी मूर्त दिखाई देती है प्रभु की। फिर उन्होंने वो रूप समेट लिया और बैठ के क्या जाए चर्चा करेंगे बेटा, तू सुन लेगा मेरी बात में ना मन, तो तू बोली बूच मान रहा था इसलिए थोड़ा सा यो चमत्कार तुझे दिखाना पड़ा। फिर पूरी कहानी बताई, सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब राम राय ने कहा हे भगवान, उस झुमकरा ने कहा कि प्रभु ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया कोई नहीं, ओए होए ऐसा निर्मल ज्ञान। तब गरीबदास जी ने कहा कि भाई तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झुमकरा, तत्व भेद किसी के पास नहीं है, ये तो जनता ने इकट्ठी करके पैसे इकट्ठे करते हैं प्रभुता के भूखे। कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा, करोड़ संतों में कोई भी इस तत्व भेद को बताने वाला नहीं, इतने अरब संतों में अरब मार्गदर्शकों में एक में लगा गर्क, गर्क मीन कंप्लीट, जिसके पास ज्ञान भी है समाधान भी है, यानी इस कबीर साहब के ज्ञान को सुनकर आम आदमी यानी ज्ञानी बन सकता है। अब तो नहीं बन पाओगे क्योंकि हम इसे कंडम कर देंगे, को पनप ही नहीं सकता, पनपेगा तो जनता स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि ज्ञान ऐसा है। एक दो दुष्ट आत्मा इस दास से उपदेश प्राप्त थे, तीनों मंत्र प्राप्त किए, चापलूसी करके खूब सेवा सेवा करते थे। अब वो एकाधी जगह जाकर किता अपनी रोजी रोटी खातिर स्वयं नाम देने लगे, उनका पूरा विस्मरण इस दास ने भक्ति और भगवान नामक पुस्तक में लिखा है, भगतजन उसको खूब पढ़ते हैं और उनसे सावधान रहेंगे। अब जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है बच्चे का, उसमें चार लाइन होती है, यू आर हियर ईयर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे दस्ते कर देता है एक चेयरमैन या अधिकारी जो उसका अधिकारी होता है, कॉम्पिटेंट जो होता है वो साइन करता है उन चार पंक्तियों पर, और उस बच्चे को सरकार सारी सुविधा देती है, तनख्वाह भी देती है, उसको पेंशन भी देती है, उसको भत्ता भी देती है। और वही चार लाइन लिख के कोई मेरे कैसा अपने दस्त कर दे और बांट दे अपॉइंटमेंट, वो व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। लाइन वही है, स्टेटमेंट वही है, लेकिन यूज कति नहीं। ऐसे ही इस दास से उपदेश लेकर ही कोई लाभ प्राप्त कर सकता है, वो नकलियों का डुप्लीकेटों से नहीं। जैसे कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है तो वहां जाकर पकड़ा जाएगा, दोनों पटेंगे, बनानिया भी और बनवानिया भी। तो इसलिए हमने सावधान रहना पड़ेगा कि हम इसे नकली स्वार्थियों से भी बचें। तो क्या बताते हैं गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 17-18 तक, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की स्थिति और अपनी स्थिति यानी ब्रह्म की स्थिति क्लियर की, कि हमारी मेरी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना भी कंप्लीट नहीं है और मेरी साधना भी घटिया है, और उस वासुदेव की साधना ही सत्य है, उसी के विषय में कोई जानकारी देने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बहुनाम जन्म गीताजी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, के बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई एकादि ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना, मुद तक की साधना करती है, ना तो नीचे के देवी दाव देवता भैरव भूत बरली भी तरली गुड़गम आली बेरी आली और एक साड़या या कौन सी है उसकी, इन्हीं की पूजा जपड़े रहते हैं, या फिर गणा पहुंच जा देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंचते हैं और कहते एकादा बहुत किसी अंत के जन्म में ब्रह्म साधना करता है, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही पूजा के योग्य है, वो पापनाशक है, पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व सृष्टि रचनहार है, वही उसी की पूजा करनी चाहिए, ये बताने वाला संत तब बड़ी मुश्किल से मिलेगा। कोटो मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। अब उन सरदार जी को राम राय जी को से जो वार्ता हुई प्रभु की वो आपको सुनाते हैं। अब इन सभी चक्रों का कमलों के विषय में जानकारी देते हुए गरीबदास जी प्रारंभ करते हैं। नाभि कमल में पैठिए रही झूमकरा, चल बंक नाल के नाल सुन घाट सुनो रही झूमकरा, इला पिंगला फेरिए रह झूमकरा, उतरो ओगट घाट सुनो रही झूमकरा, सुषमणा सुरत लगाई ये रे झूमकरा, खोलो बजर कपाट सुनो रे झूमकरा, अनभय मालन उतरी रे झूमकरा, फूलन सेज बिछाई सुनो रे झूमकरा, छतर सिंहासन सवेत है रे झूमकरा, पलकों चोर ढुराई सुनो रे झूमकरा। ऊपर की आंखों देखा हाल उस राम राय जी को बता रहे हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहेब जी, के छतर सवेत, छतर सिंहासन सवेत है रे झूमकरा, उस परमात्मा का सतलोक में छतर और सिंहासन वो पूरा सफेद है, दोनों का एक में वर्णन किया है। छतर सिंहासन सवेत है रे झूमकरा, वहां पलकों चोर ढुराई सुनो रही झूमकरा, यानी चोर एक तो ये सफेद से बालों का होता है, जो कहे नहीं वो परमात्मा इतना प्यारा है कि अपनी पलकों से प्यार से उसका चोर ढुराना चाहिए, यानी इतनी श्रद्धा बना उसके अंदर। अरस देवांग ना गांव ही रे झूमकरा, अनहद शब्द घमोड़ सुनो रही झूमकरा, और कहूं कुछ और है रह झूमकरा, बिन देही का देव सुनो रह झूमकरा। बिन देही का देव यानी हमारे जैसा शरीर नहीं है, अकायम सुक्रम अकायम असनाविरम, वो परमात्मा स्वयंभू तेज पुंज का शरीर है, उस मालिक का हमारे जैसी काया नहीं है, वो इस ऐसी देही वाला देव नहीं है। स्वर्ग रसा तल में बसे रह झूमकरा, जागी कर ले सेव सुनो रह झूमकरा। अदर धार आगे रह रह झूमकरा, उजन तोल ना मोल सुनो रह झूमकरा। तावा मौला देखिए रह झूमकरा, रतन जड़े चैंडोल सुनो रह झूमकरा। अब परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ जानकारी दी, इतना समय नहीं है, बहुत सा ज्ञान आपको बताना था, अभी तक तो इसकी भूमिका बनी जो दास आपको बताना चाहता था। अब हमने सबसे पहले ये निर्णय लेना है कि कौन वो परमात्मा है और उसकी के साधना है उसके प्राप्त करने की। पवित्र वेदों ने प्रमाणित किया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है अपने मुक्ति धाम तक और अपनी श्रेष्ठ आत्मा को मिलता है, और उसको उपदेश देने की इच्छा से आता है, उसको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। और ये प्रैक्टिकल आपको बताया, एक स्पष्ट उदाहरण प्रत्यक्ष के गरीबदास साहिब को छुड़ानी में, जो हरियाणा के अंदर है, वहां खेतों में भगवान मिले आके, और उनकी जहां वो कबीर जी आए थे परमेश्वर जी, वहां आज भी एक यादगार बना रखी है। उन्होंने बना तो इसलिए रखी है कि यहां लोग देखने आएंगे, दो पीछे चढ़ाओगे अपना चढ़ावा न लगा, तो परमात्मा ने उसको आज तक जीवित रखना था इन उदाहरणों को, इन स्थानों को, कि ये लालची लोग इस कारण से सुरक्षित रख ले, तो वो आज तक भी ये प्रमाण परमात्मा का प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार हम परमात्मा को पहचान कर उसकी प्राप्ति करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय।